प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रथम इकाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कुल 3 अध्याय थे, जिसमें से हमने 2 अध्याय, जिसमें पहला अध्याय भारत के संविधान की विशेषताएं और दूसरा अध्याय मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज इस इकाई का तीसरा अध्याय व अंतिम अध्याय भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व इस अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों को जानने से पहले हम संघवाद के बारे में चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है या संघवाद किसे कहते हैं? संघीय देश कौन कौन से माने जाते हैं तथा संविधान में संघवाद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है तथा भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कितने राज्य थे तथा वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघवाद क्या है? संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर विभाजन किया जाता है। या संघवाद किसे कहते हैं? तो सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। संघवाद में शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों यानी विभिन्न प्रांतों के मध्य होता है। वर्तमान में सफल संघीय देश कौन कौन से हैं? वर्तमान में सफल संघीय देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत हैं। वर्तमान में सफल संघीय देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत हैं। भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता और 14 राज्यों या प्रांतों की सत्ता स्थापित करने और संघीय ढांचे को मूर्त रूप दिया गया। तो भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कुल 14 राज्य थे और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां केंद्र द्वारा शासन का संचालन होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर केंद्र द्वारा शासन का संचालन होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। हमने पहले पढ़ा संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद क्या है, थोड़ी सी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की, लेकिन मुख्य टॉपिक अब है इसमें भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था का पहला तत्व या विशेषता या लक्षण, तत्व कहो चाहे विशेषता कहो या लक्षण कहो, एक ही बात है। तो पहला तत्व है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सूची पद्धति के माध्यम से करता है। शासन शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में मिलता है और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जिसमें पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में शासन शक्तियों का विभाजन है 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, संघ सूची को हम केंद्रीय सूची भी कह सकते हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार या केंद्र सरकार का होता है। संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार या संघ सरकार का ही होता है। इनमें 100 विषय रखे गए हैं, जिनमें से 2-3 विषय तो हर किसी को याद होने चाहिए, जिसमें प्रमुख विषय हैं प्रतिरक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार व मुद्रा, यानी राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संघीय सूची में या संघ सूची में शामिल किया गया है। दूसरा विषय या सूची है राज्य सूची। वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून या विधि बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का ही होता है। राज्य सूची में प्रमुख विषय जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं सिंचाई आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि व सिंचाई जैसे विषय आते हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों का होता है। संघ सूची के विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची में विषय जैसे शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ आदि ये संवर्ती सूची में रखे जाते हैं, संवर्ती सूची के विषय। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था की पहली विशेषता, पहला लक्षण या पहला तत्व है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शासन शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार अधिकार बनाती हैं, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून या अधिकार बनाती हैं। दूसरा तत्व या दूसरी विशेषता है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए या संघीय व्यवस्था वाले देशों के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होना अति आवश्यक है। इसी से विधि का शासन स्थापित होता है। निष्पक्ष या स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर विधि का शासन है, कानून का शासन है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का संविधान के प्रावधानों के अनुरूप समाधान किया जा सकता है। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो केंद्र तथा राज्यों के बीच बीच कोई विवाद वगैरह हो जाए तो विवादों का संविधान के कानूनों के अनुरूप ही समाधान किया जा सकता है। ऐसे अनेक अवसर भारत में आए जब न्यायपालिका ने राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढांचे की रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है। सबसे न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय या शीर्ष स्थान पर न्यायपालिका की संरचना में शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय को ही रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, यह हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस प्रकार पहली विशेषता हुई शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, दूसरी विशेषता हुई निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था का दूसरा तत्व था निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हम संघीय व्यवस्था के तीसरे तत्व या विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था का तीसरा तत्व या विशेषता या लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। भारतीय संघवाद के अंतर्गत या भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। केंद्र तथा राज्य दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। अमेरिकी संघवाद के विपरीत भारतीय विविधता के कारण ही संपूर्ण देश के लिए केवल एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। भारतीय यानी भारत में विविधता को देखते हुए, विशालता को देखते हुए संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। इकाइयों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यों को अलग संविधान बनाने का अधिकार भारत में नहीं दिया गया है। इस कारण भारत में एक ही संविधान है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था की तीसरी प्रमुख विशेषता है। संघीय व्यवस्था का फोर्थ तत्व या विशेषता चौथी विशेषता है एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता कहें या इकहरी नागरिकता कहें, एक ही बात। पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए किया गया था। भारत की विशालता या बहुलता के कारण भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। तो संघीय व्यवस्था की चार विशेषताएं के बारे में हमने चर्चा की है। पहली विशेषता शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, दूसरी निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरी संविधान की सर्वोच्चता और चौथी विशेषता हमने पढ़ी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और पांचवी विशेषता है या पांचवा तत्व है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। पांचवा तत्व या पांचवी विशेषता या पांचवा लक्षण है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए ही केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्य की प्रतिनिध्यात्मक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। यद्यपि अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्यसभा में राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है, वरन जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। इस प्रकार पांचवा तत्व केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। छठी विशेषता या तत्व या लक्षण है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यद्यपि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, परंतु केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में उसकी अपनी उपयोगिता है। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था का छठा तत्व था राज्यपाल का पद। सातवीं विशेषता सातवां तत्व या अंतिम विशेषता है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व, भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जा सकती है। केंद्रीयकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जाती है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि कुछ वामपंथ समर्थक राजनीतिक दल तथा विघटनकारी विचारधाराएं इस एकात्मक प्रवृत्ति का विरोध करती हैं, यथार्थ में संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को निर्णायक भूमिका प्राप्त है। वर्तमान में अनेक प्रावधानों अनेक कानूनों के माध्यम से केंद्र को निर्णायक भूमिका दी गई है। संविधान संशोधन, राज्यों के निर्माण, पुनर्सीमांकन, आपातकालीन परिस्थितियों, आर्थिक अधिकारों आदि संदर्भों में केंद्र की स्थिति अत्यंत मजबूत और निर्णायक रखी गई है। जैसे संविधान संशोधन करने में, राज्यों के निर्माण करने में, पुनर्सीमांकन, आपातकालीन परिस्थितियों में, आर्थिक अधिकारों में केंद्र की स्थिति को मजबूत और निर्णायक रखा गया है। विभिन्न उदाहरण भी ये स्पष्ट करते हैं कि सशक्त केंद्र वाले भारतीय संघवाद ने वस्तुतः भारत की एकता व अखंडता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार आज हमने संघवाद क्या है, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं या तत्व या लक्षणों के बारे में चर्चा की है। तो एक बार मुख्य बिंदु वापस सुन लें। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व थे। पहला तत्व था शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो तीन सूचियों में था। दूसरा तत्व निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। तीसरा संविधान की सर्वोच्चता। चौथा एकल नागरिकता। पांचवा तत्व केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। छठा तत्व राज्यपाल का पद। सातवां एकात्मकता का प्रभुत्व। इस प्रकार हमने संघीय व्यवस्था की सात तत्व या विशेषताएं या लक्षणों के बारे में चर्चा की है। तो इसको याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।